क्या पांच सात चीजें क्या पता लगी कि जो आपको पक्का हो गई कि ये तो अच्छा आई कैन डू प्रैक्टिकली?
पांच छह चीज ऐसा पता लगा कि हाँ, मतलब मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, मतलब पता नहीं है, फिर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये चीज़ पता लग गया एक तो। दूसरा है कि मेरे को गेस नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये टेंशन खत्म हो गया था मेरा। तीसरा है मेरे को जो है, मेरे को एक जॉब भी करना है प्लस स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी होता है कुछ, कि मेरे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है, एज ए अलर्ट लगा के भी मेरा काम हो सकता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम था कि उसमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है कई बार, जैसे एडजस्टमेंट भी। और 2022 के बाद जो है वीक्स जो हमारा आईवी होता है काफ़ी कम हो गया था, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करने लगा, मतलब करना पड़ रहा था बार 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 जो एडजस्टमेंट करना पड़ता था, क्योंकि बहुत छोटी रेंज मिलता था
प्रीमियम
क्योंकि
बहुत
प्रीमियम
कम
था ही
है,
नहीं बहुत ज़्यादा।
प्रीमियम बहुत कम हो गए होंगे,
तो मैंने सोचा यार चलो नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग तो मैं इतना ज़्यादा मतलब उसमें एक्टिव नहीं रह सकता हूँ,
राइट?
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज अ स्विंग ट्रेडिंग किया जाए, इसमें स्विंग नहीं बोलूँगा, एज अ पोजिशनल ट्रेडिंग किया जाए लेकिन एज अ डायरेक्शनल किया जाए, ताकि मेरा जो है एक स्टॉप लॉस और एक
टारगेट
क्या बोलते
प्राइस,
हैं टारगेट लगा के काम बन सके, तो सारी चीज़ें मैंने एज अ सिस्टमेटिक हो सके काम। तो चलो
करेक्ट।
यहाँ तक तो मैं समझ गया। तो वहाँ पे जैसे मैंने प्रैक्टिस करने लगा तो मुझे एज अ डायरेक्शनल ट्रेड भी मिला और जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी मिला, मैंने दोनों मैंने प्रैक्टिस किए अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ये भी एक प्रॉब्लम है कि एज अ कम कैपिटल पे न्यूबी ट्रेडिंग में चार्जेस बहुत लग जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में लेग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। और जो मैं अगर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर डायरेक्शनली करूँ फिर भी उसके बाद भी मेरे को एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में भी मेरे को एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अगर स्टॉप लॉस मुझे मेंटेन ही करना है तो मैं एज अ मेहनत क्यों करूँ इतना ज़्यादा,
ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगती है।
हाँ ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्यों ना मैं एज अ ऐसा सिस्टम निकालूँ कि जिसमें मुझे कम का मतलब ब्रोकरेज मेरे को कम लगे प्लस एज ए मेरे को स्क्रीन टाइम भी मुझे कम देना पड़े।
एक तरीके से बात ही हो रही है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है या सिस्टमेटिक बनना है। आप सिस्टमेटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सिस्टमेटिक में आपके इमोशनल प्ले में नहीं आएंगे, और आपको एक टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस करके रखना है, तो आपको पता है कि आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना नहीं है, ज़्यादा पोजिशन मैनेजमेंट भी नहीं करना होगा, इसके चक्कर में ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं होंगे, मतलब ब्रोकरेज भी कम लगेगा, तो आपको जो टेक अवे प्रॉफिट है जो घर पर लेके जाएंगे वो ज़्यादा रह जाएगा।
ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने जो है ये चीज़ समझ गया। अब जो है क्या मेरे को जो है एक साल बाद जैसे लोन लगभग ख़त्म होने वाला है, उससे एक दो महीने पहले कि मेरे को बहुत मतलब
अच्छा, 25,000 का लोन चल रहा था।
ये लगभग ख़त्म होने जा रहा है और अभी जो है 2 महीना और बाकी है, तो मैंने सोचा कैपिटल तो कैसे भी मतलब लाना है, कहाँ से लाऊं। तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों के लिस्ट निकाले,
पक्के दोस्त कितने हैं
पक्के दोस्त कितने हैं कि मुसीबत में मेरे साथ दे सकते हैं,
अब पता लगेगा,
तो लगभग 50-60 लोगों के तो नाम निकाल लिए।
जो आपको ट्रेडिंग के लिए पैसा देंगे और उनको पता होगा कि वो ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं।
नहीं कि ट्रेडिंग के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि किसी को पास मैं 1 लाख रुपए मांगूंगा कोई नहीं देगा, लेकिन किसी के पास 2,000 रुपए मांगूंगा दे देगा। 50 लोगों के नाम निकाले जैसे तैसे, उनमें से मैंने बोला कि वैसे ऐसे मुसीबत है 2,000, और अगर ये पैसा डूब भी जाए तो क्या 2,000 गए, किसी को बता दूंगा कि बाद में दे।
सारा वाले भी यही करते थे वैसे
तो ऐसा करना नहीं है, लेकिन एज अ
दोस्तों को पता है ऐसे उनके साथ ये हुआ था तब।
अभी उनको पता लग जाएगा। तो मैंने ऐसे उनसे ऐसे 1 लाख इकट्ठा कर लिया। दूसरा था मेरे बाइक का जो एनओसी था उसको गिरवी रख दिया, एनओसी एनओसी से भी लोन मिल जाता है, तो ऐसे करके 2 लाख
किस चीज़
हो
का
गया
एनओसी था ये?
बाइक का मेरा।
अच्छा,
हाँ वो एनओसी देके मैंने बैंक से और 1 लाख ऐसे लोन ले लिया। तो तब जो है मैंने धीरे जब मैंने उसको समझ गया मार्केट को, फिर मैंने जो स्टार्ट कर दिया, ये लगभग मैं बात कर रहा हूँ 2021 के नवंबर दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 1 महीना स्टार्ट किया, पहले 2 महीने में मतलब आयरन फ्लाई से मतलब नॉन डायरेक्शनल ट्रेड शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि प्रीमियम
सीधा ऑप्शन
सेलिंग में
पहला सेगमेंट, मतलब स्टार्ट ही ऑप्शन सेलिंग से किया है। कल भी हमने एक पॉडकास्ट शूट किया है और वो भी फिजी में थे, सिखाते थे, और वो भी सबसे पहला सेगमेंट उनका भी ऑप्शन सेलिंग,
क्योंकि एक चीज़ है असीम भाई कि एक्सपीरियंस बंदा हमेशा ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा जाता है, क्योंकि और जो जॉब वाले बंदे वो भी मेन रीज़न यही था कि मेरे को कम स्क्रीन टाइम पे चाहिए,
कम स्क्रीन टाइम और कम मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट।
कंसिस्टेंट प्रॉफिट, क्योंकि हमें मैंने मतलब मंथ का सैलरी का एक आदत है कि हर मंथ सैलरी आएगा, तो उस हिसाब से एक कंसिस्टेंसी चाहिए था अपने को। तो उस हिसाब से हमने इस चीज़ को डिसाइड किया कि ऑप्शन सेलिंग में ये एक स्टेबल इनकम है, मतलब स्टेबल इनकम है, तो इसके जो है इससे जो है काम बन सकता है अपना, कि मैंने उसे प्रैक्टिस भी कर लिया था काफ़ी अच्छा, तो इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आया था। और एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारा ट्रेडिंग में हो गया क्या बोलते हैं लोग जो है ट्रेडिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट अलग अलग ढूंढते हैं, कोई बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक बहुत सारे ढूंढते हैं। अगर मैं एज ए ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं एज ए ऊपर भी जा सकता हूँ नीचे भी जा सकता हूँ, तो मैं बार बार क्यों मतलब एक चीज़ को चेंज क्यों करूँ, डायरेक्शन तो मैं कोई भी जा सकता हूँ, ऊपर से ऑप्शन साइडवेज भी चल जाएगा मेरा।
साइडवेज मार्केट में भी स्ट्रेटजी लग जाती है,
लग जाती है, सारे स्ट्रेटजी लग जाता है। तो मैं सोचा एक ही चीज़ में करते हैं, कैरेक्टर भी समझ में आएगा इस चीज़ का और जो है एक चीज़ में हाथ भी सेट हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए जो है ऑप्शन सेलिंग चुना और जो है एक ही जगह पे शुरू कर दिया, मतलब एज ए निफ्टी में शुरू कर दिया उसी टाइम पे। ये था मतलब स्टार्टिंग जर्नी। अब मेजर ब्लंडर कहाँ पे आया, यहाँ इसके बाद भी कहानी है कि जैसे यूक्रेन वार जब हुआ था, अब मैं न्यूज़ वगैरह इतना देखता नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन वार होने वाला है, यहाँ पे आई भी बढ़ चुका है, बोला भर के प्रीमियम आ रहा है, क्या हो गया पता भी नहीं, मैंने पता नहीं किया मैंने। और जो बोलते हैं ना एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट आपको रहना है प्रैक्टिस के बाद भी,
नेकेड पोजीशन
तो वहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल सेल कर दिया नेकेड,
नेकेड
पोजीशन यूक्रेन वॉर से एक दिन पहले। और किस्मत अच्छी थी कि मैंने बहुत दूर लिया था क्योंकि प्रीमियम बहुत मिल रहे थे, और दूसरे दिन खुला गैप डाउन 2.5 से 3% के आसपास, और जैसे ही खुला लगभग मेरे 8% के आसपास कैपिटल उड़ गया, मतलब 16,000 के आसपास कैपिटल उड़ गया।
कितने की ट्रेड थी ये?
2,00,000 की, मतलब टोटल दोनों साइड में ले रखा था मैंने, हाँ 8%
2,00,000।
तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि भाई ओवरनाइट बहुत रिस्की है, नेकेड तो कभी नहीं जाना चाहिए। उस दिन से मैंने आज तक कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग किया नहीं है।
उससे पहले मतलब लगातार कर रहे थे?
उससे पहले तो मैं एज आयरन फ्लाई कर ही रहा था।
अच्छा, आयरन फ्लाई कर,
आयरन फ्लाई पे कर ही रहा था, आयरन फ्लाई पे काफ़ी सेफ लग रहा था। लास्ट दो महीने से हमारा जो लगभग 4-4% आ रहा था।
ये दूर के जो सेलिंग कर लेते हो?
नहीं, आयरन फ्लाई जो हमारा ट्रेंड जैसा बनता है,
कर दो सबके लिए।
जैसे कि हमने ATM जो है कॉल पुट बाय सेल मतलब सेल किया, ATM CEP सेल किया, उसको जो हेज किया हमने, एक जो है जैसे कि उसका 200-250 पॉइंट दूर हमने हेज कर लिया, दूर का हेज कर लिया। तो ये हो गया हमारा आयरन फ्लाई, हो गया बेसिक आयरन फ्लाई। ऐसे तो एक स्ट्रेटजी बिना एडजस्टमेंट के जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेंज है वो काफ़ी कम है, बहुत छोटा सा है, 2% चांस रहता है कि सेंटर में रुकेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड सही रहता है इसमें कि जब, क्योंकि एज ऑप्शन सेलिंग में जो है या तो आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो या आप प्रोबेबिलिटी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते थे कि जैसे कि बाजार इस साइड में आयरन फ्लाई को तोड़ के जा रहा है, मतलब ब्रेक इवन को ब्रेक करके जा रहा है, तो हम इस साइड से हम सेल करते थे जो हमारा एक्स्ट्रा हमारा पैसा बचा हुआ था, उससे
प्रीमियम खींच सकते,
प्रीमियम खींच सकते थे। तो ऐसे करके हम करते थे, वो सही भी चल रहा था, ऐसे मैं बुरा नहीं बोलूँगा, ऐसे काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजी भी है वो। तो वहाँ पे जो मेरे अंदर क्या हुआ कि कोई दूसरा स्ट्रेटजी भी देखते कैसा है, ये ख्याल आया, तो मैंने स्ट्रैंगल सेल कर दिया। और वो किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसके दूसरे दिन ही युद्ध छिड़ गया।
और आपको पता ही नहीं था?
मेरे को पता भी नहीं था, सुबह उठा देखा 2.5% गैप डाउन।
बट अगर हेज पोजीशन में अगर आप ओवरनाइट जाते हो तब भी रिस्क होता है?
तब भी रिस्क होता है, लेकिन एज ए आप जो है अपने हिसाब से उसको एडजस्ट, मतलब पैक्ड रिस्क होता है।
अब जैसे कोई इवेंट हो जाए, जैसे कि यूक्रेन वार हो गई,
यूक्रेन वार हो गई, ये आते हैं सर 2-3 साल में एक बार आते हैं, जैसे 2-3 साल 4 साल ऐसे में आते हैं एक बार दो बार, लेकिन तब भी मैं कहूँगा भले ही 1% का रिस्क हो लेकिन रिस्क है।
बाइंग में तो बहुत कहते हैं रिस्क होता है ओवरनाइट,
बाइंग में चलो कि सर उतना ही जाना है जितना आपने लगाया है,
जितना लगाया जितना प्रीमियम दिया है।
इसमें क्या, आपने अगर हेज नहीं किया है तो कहीं भी अगर खुल गया तो आपका पूरा कैपिटल जा सकता है।
करेक्ट,
ये एक रिस्क है। तो इसको जो है मैं हमेशा एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग में बात ये करूँगा कि मैं एज हमेशा 10% या 15% से ज़्यादा रिस्क, मतलब ओवरनाइट का मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई मेजर मतलब ब्लंडर हो भी गया, कोई गैप डाउन खुल भी गया, तो मैं 6-7 महीने में मैं रिकवर कर लूँगा।
वो जो ब्लंडर होगा ना वो भी बहुत रेयर होगा, फिर
रेयर होगा, काफ़ी कम होगा। प्लस जो ये एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है तो चांसेस भी 50-50% है, मतलब एज ए या तो मेरे फेवर में भी जा सकते हो गैप डाउन।
थोड़ा समझाओ इसको थोड़ा।
जैसे कि मैं डायरेक्शनल ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं एज ए प्राइस के मोमेंटम के ऊपर ले रहा हूँ, प्राइस एक्शन के बेस पे, कि मैं प्राइस जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मैं ले रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसे मैंने क्या बोलते हैं डायरेक्शन लिया तो उसमें 50-50 चांस है, मतलब या तो अगर गैप अप हुआ तो मेरे फेवर में भी जा सकता है और जो है मेरे
अगेंस्ट भी जा सकता,
उसमें भी जा सकता है, एक चांस काफ़ी कम हो गया 50%। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेडिंग का फ़ायदा है, ऑप्शन सेलिंग का। तो ये थोड़ा सा मैं देखा, काफ़ी ज़्यादा कम जो है स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, कैसे मैं अलर्ट लगा के जाता हूँ, ऑफिस में बैठ गया, वॉच में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें अलर्ट आ गया निकाल के तुरंत काट दिया या स्टॉप लॉस लगा दिया।